सत्यात प्रकाश के साथ में समुल्लास अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, उससे पहले थोड़ी सी ईश्वर भक्ति करते हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। नए साल शुभ हो, सुख शांति समृद्धि लाए आपके जीवन में, नई स्फूर्ति नया सामर्थ्य भरे, जीवन को नई तरीके से सोचने को मौका मिले, जीवन में आगे बढ़े। सत्यार्थ प्रकाश के 7th चैप्टर, जिसको अंग्रेजी के सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी में है, अंग्रेजी में लाइट ऑफ ट्रूथ ट्रांसलेशन है, 7वां चैप्टर चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, आज उसका तीसरा भाग है। शुरू में हमने शुरू किया था कि ईश्वर एक है या अनेक है, अगर एक है तो वेदों में इतने तरह की देवताएं क्यों आते हैं, ये जो 33 कोटि देवता इसका क्या फॉर्मूला है, ये सब चर्चाएं हमने सुनी थी। उसी प्रश्न में ये थोड़े से आगे के बढ़ते हैं। When you do an evil thing, ईश्वर है या नहीं है, क्या प्रमाण है, उस पर भी हमने थोड़ी बहुत चर्चाएं सुनी थी। उसी कड़ी में ईश्वर है या नहीं है, उस कड़ी में एक दो और पॉइंट्स रख करके आगे बढ़ते हैं। When you do an evil thing such as theft or a good thing as benefaction, as that very moment spring up from within the emotions of fears, hesitation or shame, the action is bad. और अगर अच्छा काम करते हैं तो जो fearlessness, जो निडरता, determination, जो खुशी, अजीब सी खुशी अंदर से आती है, स्वामी जी कहते हैं ये ईश्वर के द्वारा किया गया कमांड होता है। आप कैसे जानेंगे कि ईश्वर आपके अंदर भी समाया हुआ है, क्योंकि आप अल्पज्ञ हैं, बहुत कम जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं और जानते नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, कि इसका क्या फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। पर दुनिया में मोक्ष मूर्ख आदमी, अगर उसे जंगल में भी रहता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मां बाप के साथ में कोई सोशल ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को भी उतनी ही खुशी होती है जब वो किसी को मदद कर देता है, किसी का भला कर देता है, कोई अच्छा काम कर देता है। बुरा सा बुरा आदमी भी अगर उससे कभी कोई अच्छा काम हो जाता है, उसके अंदर से एक अजीब सी खुशी आती है, वो खुशी उसकी अपने द्वारा क्रिएटेड नहीं है, वो उसके माइंड की अपने इंटेलेक्ट की क्रिएशन नहीं है, वो स्वामी जी के भाव में वो उस ईश्वर की प्रेरणा है जो आपको अंदर से, इसकी भाषा है ये, और ईश्वर की भाषा को आप रियलाइज कर सकते हैं, आप सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और रियलाइजेशन है जब भी हम अच्छा काम करते हैं हमें अंदर से अजीब सी खुशी आती है, जब भी आपको पता लगता है कोई बहुत नीडी है, किसी को बहुत जरूरत है, आप शुरू शुरू में हेजिटेट करते हैं पर किसी तरह आप जाते हैं उसको हेल्प करते हैं और आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपके हेल्प के कारण किसी का कोई ठीक हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उसको कितनी खुशी होगी नहीं होगी वो एक डिफरेंट मैटर है, पर आपको अंदर से ऐसी अजीब सी इतनी एक अलौकिक सा आनंद मिलता है वो सिर्फ आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी तरह जब भी हम गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बा कोई भी गलत काम करते हैं, हम पब्लिक में अपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन कैसा भी रखे, पर अंदर से वो जो गिल्टी कंसस है, जो मेरे से बुरा हो रहा है, ये भाव आपके अंदर आता है। जब हम किसी को गाली देते वो सामने वाले को नींद आए ना आए, आपको भी उतनी ही बेचैनी होती है अंदर से। वो बेचैनी सिर्फ यही इंडिकेट करता है जो कुछ हो रहा है वो बुरा हुआ मेरे से, और वो इंडिकेटर मैं खुद तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं ही कर अच्छा या बुरा कर रहा हूं, समान एल्स इज इंडिकेटिंग मी समथिंग इज गोइंग बैड समथिंग इज गोइंग गुड। स्वामी जी कहते हैं वो परमात्मा की सत्ता है जो कण कण में तो है पर आपके अंदर भी है, और वो सत्ता के प्रेरणा होती है, जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो तो आपको अंदर से उसकी आवाज आती, उसकी उसकी फीलिंग आती है, जो बुरा करते हैं तो उसके अंदर से फीलिंग आती है। मनुस्मृति में जो धर्म की परिभाषा लिखते हैं कि धर्म को कैसे हम जाने कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है सही है, तो उसमें जो चार मीन्स देते हैं, जो चार साधन देते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। महाभारत में, राम धर्मशास्त्र में ये बार बार आता है कि चार चीजें होती हैं। जब भी आप कंफ्यूजन में हो, डाउट में हो, डिलेमा में हो, समझ में नहीं आता है कि ये करें ना करें, तो आप चार चीजों में से आप फॉलो करें। और जो लास्ट वन है, जो पहला है, श्रुति है, आपके जो ऑथेंटिक शास्त्र हैं, वेद आदि शास्त्र हैं, अगर वो आपके आपके पास नहीं, अवेलेबल नहीं है, या उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप स्मृति धर्मशास्त्रों को देखिए। अगर वो भी नहीं है तो संसार में जो महान पुरुष हैं, जिन्होंने अपने सदाचरण के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा समाज में प्रतिष्ठित है, जिनका नाम है, तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी से देखिए, उनके जीवन के, उनके लाइफ को देखिए, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में क्या डिसीजन लिया था, आप डिसीजन ले सकते हो। अगर वो भी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप स्वस्य च प्रियमात्मन, आपके अंदर की आवाज को सुनो, वो उसको क्या अच्छा लगता है, जिसको कि मोस्ट ऑफ टाइम हम दबा देते हैं। ज्यादातर समय इंसान अपने अंदर की आवाज को, 90% आवाज को, हमारे अंदर की जो आवाज, हम उसको दबाते हैं। इवन बचपन में मैं कुछ पढ़ना चाहता था, जिसको पढ़कर के मुझे ज्यादा खुशी होती थी, पर मैं और कुछ पढ़ता था क्योंकि मुझे प्रोफेशनली और कुछ बनना है, क्योंकि उसमें पैसा कमाने का साधन बहुत है। ये बचपन से ही, जब से पैदा हुआ, ऐसा पेरेंट्स के थ्रू, समाज के द्वारा, पीयर प्रेशर के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण, मेरे जो अंदर की असली आवाज है वो मैं हमेशा दबाता गया, और इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो गया कि वो मेरा नेचर हो गया। अब तो मुझे बहुत कम सुनाई देता है, मेरे अंदर से भी कुछ आवाज आता है, कुछ सजेशन आता है, जिसको आप सेल्फ सजेशन कहते हैं। तो तब भी, उसके बावजूद भी, जब भी मेरे से कुछ नोइंगली और अननोइंगली, समझकर या ना बिना समझे ही कोई अच्छा काम हो जाता है, मेरे अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी एक हल्कापन महसूस होता है। इसी तरह जब भी मैं कुछ बुरा काम करता हूं, मेरे अंदर से एक भारीपन, एक डरा हुआ सपन, एक तनाव पैदा होता है। तो स्वामी जी कहते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा होती है, वो जिसके कारण आपको ऐसी महसूस होता है। दूसरी चीज, When the self sets to contemplate God with purity of feelings, it perceives both the God and its own self. ईश्वर तो सब कण कण में है, सब जगह है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, जहां कुछ भी नहीं वहां भी है, जहां सब कुछ है वहां भी है, सब जगह है। तो ढूंढने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बाजार जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मिलेगा तो सिर्फ अंदर ही मिलेगा। मतलब किसी को पता है कि कौन सा सामान कौन से स्टोर में मिलता है, वो ज्यादा हौच पौच में नहीं पड़ता है, सीधा वॉलमार्ट में जाता है, या जहां भी उसको खरीदना होता है जाता है, उसको पता है कहां मिलता है, ऑफिस डिपो जाता है तो अपना सामान लेकर के आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है तो 15-10 दर्जनों तरह के स्टोर में घूमते रहते हैं, ये चीज कहां मिलेगा, पूछते रहते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, दूसरे तरह के स्टोर में जाते हैं, कभी कभी ड्राइव करते रहते हैं, फिर बाद में जाकर के जिस स्टोर में उसको मिलना है वहीं से लेकर आते हैं। फिर यह हर एक की अपनी अपनी सोच है, बुद्धि है, दिमाग है, शक्ति है, क्षमता है, इंटरेस्ट है, तो लोग हम भी अलग अलग जगह ट्राई मारते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर मिलेगा आपको वो अंदर ही मिलेगा। तो फिर ये सारे जो धार्मिक संस्थाएं बनी हुई है, मंदिर मस्जिद ये सब बने हुए, तो क्या है, वो आपके लिए एक एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं, आपके माइंड को इस तरह ले जाने के लिए, आपके मन को उस रास्ते में ले जाने के लिए वो एक माहौल पैदा करते हैं। जब आप मंदिर में आते हैं, भजन में डूब जाते हैं, पूजा में डूब जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किसी का भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता लगता है, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होता है, एक मोटिवेशन पैदा होता है कि मुझे उस रास्ते पर चलना है। तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ आपके अंदर उस मोटिवेशन को पैदा करने के लिए, उस माइंड को एक खास स्टेप पर ले जाने के लिए रुकते हैं। आफ्टर ऑल यू हैव टू गो इनसाइड टू गेट हिम, और कोई चारा ही नहीं है उसको, अंदर जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और उसका अंदर जा सकते हैं कैसे, जब तक मेरा मन निर्मल ना हो, साफ ना हो, मैला से भरा हुआ अगर हो तो मुश्किल है अंदर जा पाना। एक ही शर्त है अंदर जाने के लिए कि मेरा मन निर्मल हो। इसीलिए धर्म का जो पहला जो विषय होता है हमारे यहां वो है कि मन की शुद्धि, कि हम अच्छा व्यवहार करें, सत्य बोले, चोरी ना करें, क्रोध ना करें। जितने भी आपने पढ़ा है मनुस्मृति से लेकर महाभारत से लेकर योग दर्शन के यम नियम तक लेकर, वो सारे एलिमेंटरी स्टेज हैं। इसीलिए कि आप अपने मन को शुद्ध करो, जब मन हमारा शुद्ध हो जाता है तो बड़ा आसान होता है। आप भक्ति में डूबे हैं, आप रियलाइजेशन में, ज्ञान में डूबे हैं, तो आप किसी भी रास्ते से उसको पाने की कोशिश करें, पर अगर मन आपका कड़वा है, मलिन है, मैला है, कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया भर के हिपोक्रेसी से भरा हुआ है, लोभ मोह क्रोध वगैरह से भरा हुआ है, अटैचमेंट अवर्शन गुस्सा सब कुछ से भरा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मतलब आपके बर्तन में, आपके घर में कितने भी बढ़िया खाना बना हुआ हो, पर अगर आपकी कटोरी आपकी थाली गंदी हो, उसमें गोबर लगा हो, कीचड़ लगा हुआ हो, दुनिया भर के मैला उसमें पड़ा हुआ हो, और वैसे थाली पर अगर आप बढ़िया से बढ़िया पकवान खाना आप उसमें डाल के खाओ, उस खाने का कोई मतलब नहीं रहता। वो कितना बढ़िया खाना हो, कितने बढ़िया रसोईया ने बनाया हो, कितने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स डाला हो, कितना बढ़िया टेस्ट हो, वो सब यूजलेस हो जाता है अगर आप जिस बर्तन में खाते हो बर्तन बड़ा गंदा हो, सड़ा हो, बदबूदार हो, उसमें पहले से कचरा भरा हो। तो आप कितने भी ध्यान यज्ञ तप भक्ति भजन कीर्तन तपस्या साधना प्राणायाम कुछ भी करिए, अगर मन शुद्ध नहीं है तो वो सब बिल्कुल वैसे ही कचरे वाले थाली में बढ़िया से बढ़िया खाना खाने की तरह होता है। भाई गोबर वाली थाली में अगर आप बढ़िया सा बढ़िया खाना डालोगे तो स्मेल तो गोबर की आएगी ना, क्योंकि सैकड़ों सालों से जब स्पिरिचुअलिटी एक मार्केट बना और स्पिरिचुअल लीडर्स जब दुकानदार बन गए तो अब हर चीज का शॉर्टकट बताया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बेईमान है, इंसान को काटता है कि प्राणियों को मारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करो आ जाओ मेडिटेशन सीखो सीधा ईश्वर अवतरित हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ 3 घंटे बैठ के भजन करो, ढोलकी बजाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब लोगों को लगा ये सबसे आसान तरीका है, शॉर्टकट वे तो हर किसी को पसंद आता है। और उसका परिणाम हुआ, इसका जो सबसे बड़ा परिणाम क्या मिला, जब हमने ये नहीं समझाया कि तुम्हारा मन अगर सही ना हो तो बाहरी सारे जो एक्टिविटी जो आडंबर हो जाएंगे, हिपोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाहरी चीजें जरूरी है पर साथ में मन को शुद्ध करना जरूरी है। ये ना समझने का परिणाम ये हुआ कि रिलीजन और करप्शन दो अलग अलग चीजें नहीं देखने को मिला। मतलब एक व्यक्ति खूब मंदिर जाता है, बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत धार्मिक है, घर में हवन कीर्तन भजन सब कुछ करता है, ज्ञानी विद्वान साधु सन्यासियों का सम्मान करता है, पर पक्का बेईमान है, बहुत क्रूर है, लोगों को लूटता है, बेईमानी करता है, सब कुछ करता है। मतलब दोनों पैरेलल चलते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है, दुनिया में ज्यादातर और सभी देशों में सभी रिलीजियन की यही समस्या है। और अगर सच कहें तो ज्यादातर जो करप्ट लोग हैं वो ज्यादा रिलीजियस मिलेंगे, वो आपको सबसे ज्यादा चर्च में मंदिर में मिल जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है कि एक रिलीजियस पर्सन दूसरों से ज्यादा शुद्ध नहीं मिलता, दूसरों से ज्यादा प्योर नहीं मिलता? उसका कारण है कि वो जो उसको सिखाया गया या वो जो चाहता था कि मैं दुनिया में जैसे चीटिंग करता हूं तो ईश्वर के साथ ऐसा करूं, और जब स्पिरिचुअल लीडरों ने उसको कंफर्म किया
उसके ऊपर स्टाम्प लगाया कि ऐसा हो सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे पास आने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है, आप ध्यान करो, आप भक्ति करो, आप जप तप करो, आप शास्त्र पढ़ो, आप भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए करोड़ों सालों से करोड़ों लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, पर उनके ढूंढने में वो मन की सफाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, इसलिए हमें कभी वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो स्वामी जी कहते हैं ईश्वर नहीं है, ये सवाल नहीं है, ईश्वर आपको नहीं मिलता, ये भी सवाल नहीं है। असली बात है कि किसने ढूंढने के लिए कोशिश की थी, कौन व्यक्ति है जिसने सचमुच ढूंढने की कोशिश की कि ईश्वर है या नहीं है। आपके हमारे में से एक साइंटिस्ट होता है, छोटी छोटी चीजें ढूंढने के लिए पूरी लाइफ गंवा देता है, रिसर्च करता है, लैबोरेटरी में बैठे बैठे पूरी लाइफ गुजारा देता है, तब भी वो गलत या सही पर पहुंचता है। कितनी पीढ़ियां लग जाती है साइंटिस्टों की एक रियलिटी पर पहुंचने पर, कितने सारे करेक्शंस होते हैं जिस थेसिस पर, विचारों पर, उसके बाद जाकर के किसी मैटेरियल रियलिटी का, किसी मैटर के, किसी रियलिटी के गुण के बारे में वो सही पर पहुंचते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन खपा देते हैं ईश्वर को पाने के लिए, अब नौटंकीबाजी करके है, या तो आप ईश्वर नहीं है नकार दो क्योंकि भाई हमें दिखता नहीं, मिलता नहीं, तुमने ढूंढा कब कि तुम्हें मिलेगा, तुम पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी गंवा दी सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उसके बावजूद तो तुम इतना नहीं कमा पाता जितना तुम चाहते हो, तो तुम सोचते हो बस मेरे मुंह से निकला कि ईश्वर दिखाओ तो ईश्वर खड़ा हो जाए। क्योंकि किस ज्यादातर लोग ईश्वर को पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि कुछ लोग उनको बोलते भगवान है, इसलिए नकार देते कि नहीं भगवान कहां है, ना भगवान जो है बोलता है उसको कोई खोज की चिंता है, जरा नहीं है उसको कोई खोज की चिंता है, या इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज चलता है, या इमोशनल एक्सरसाइज चलता है, या पॉलिटिकल एक्सरसाइज चलता है, डिबेट चलता है, बाकी उसको पाने की जो तरीका है कि उसको रियलाइज करो, उस रियलाइजेशन के लिए चाहिए कि आप उसके लिए ऐसा सही एटमोस्फियर क्रिएट करो अपने अंदर, उसके लिए जरूरी है कि मन पवित्र हो। इसीलिए आपको सारे धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए जितने भी आप धर्म के लक्षण पढ़ते हैं, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, धैर्य करो, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों का कंट्रोल करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, ज्ञान प्राप्त करो, या जो पतंजलि के योग में आप पढ़ते हैं, अहिंसा, अस्तेय, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेरे मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, पवित्र करने के लिए होते हैं, और ऐसा क्रिस्टल बना देते हैं, इतना इसको ट्रांसपेरेंट बना दें कि कोई चीज कितना भी सूक्ष्म हो, शटल फॉर्म में हो, वो उसको अंदर उसका रिफ्लेक्शन हो जाए। तो ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उसको पाना है तो फिर अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास बाहरी दुनिया में नहीं, अंदर के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो जरूर हमें मिलेगा। अगला पूर्व पक्ष मतलब क्वेश्चन के माध्यम से स्वामी जी अगला प्रश्न उठाते हैं, इज गॉड ऑल प्रोविडिंग और डज ही रिजाइड इन सम पर्टिकुलर लोकलिटी। क्या ईश्वर सब जगह व्याप्त है या किसी खास जगह पर है? खास जगह का मतलब पहाड़ के ऊपर, कैलाश पर्वत जैसे, समुद्र के बीच में जैसे खीर सागर में, या स्वर्ग में जैसे फोर्थ हेवन में, चौथे आसमान पर या सातवें आसमान पर, या हजार हजार तरह के सेक्टेरियन व्यू है ईश्वर कहां पर्टिकुलर जगह पर रहता है। तो ईश्वर किसी पर्टिकुलर जगह पर रहता है, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या वो सब जगह है? ही इज ऑल परवेडिंग, वो सर्वव्यापक है। इफ यू आर लोकलाइज्ड टू सम पर्टिकुलर प्लेस, ही कुड नेवर बी ऑल परवेडिंग, ऑल नोइंग, यूनिवर्सल कंट्रोलर, क्रिएटर ऑफ ऑल, सस्टेनर ऑफ ऑल, द कॉज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स into their elements, as it is impossible for an agent to do anything in place
पर ही इज नॉट। प्रॉब्लम क्या है कि मॉडर्न रिलीजियस कंसेप्ट में ईश्वर का मानवीकरण हुआ, मतलब गॉड मेड ह्यूमन बींग्स, पर जो जो रिलीजियन का जो मॉडर्न कंसेप्ट देखने को मिलता है पिछले 1000-1500-2000 साल में, वो कि जिस ईश्वर की बात हम करते हैं इट इज मेड बाय ह्यूमन बींग, और वो ह्यूमन वो ईश्वर भी हमने ऐसा बनाया जो हमें सूट करे, जो हमारी जैसे कैसे कि मैं ऐसा भगवान को मानता हूं क्योंकि वो मेरा पाप को माफ कर देता है, मैं लड्डू खिलाऊं वो खुश हो जाता है और मेरे घर में धन धान्य ले आता है, सुख समृद्धि ले आता है, मैं उसको खास तरह के किसी मीडिया के थ्रू किसी प्रोफेट के थ्रू उसका नाम लो तो मेरे सारे जो सीन से जो पाप है उसको मुक्त कर देता है जो मुझे सूट करे। और अगर कोई ऐसा ईश्वर के बारे में बता कि ईश्वर तो बिल्कुल जस्टिस को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, तो 5000 की जगह 50 लोग भी सुनने बैठने वाले नहीं मिलेंगे ऐसे भगवान को पाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ जो भगवान को मानते हैं वो हमने हमें जैसा भगवान शूट करता है हमारे नेचर को हमारे स्वभाव को हम वैसे ही जगह बैठते हैं क्योंकि वहां वैसे ही भगवान के बारे में चर्चा होती है। वो हमें मतलब नहीं कि भगवान रियलिटी में क्या है, असली बात है कि मन को संतोष मिल जाए कि एक ऐसा भगवान है जिसको आप केला चढ़ाओ तो तुम्हारे चारों पाप माफ है, जहां जा ऐसा भगवान है जहां आप सिर्फ किसी प्रोफेट का नाम ले लो वो आपके जिंदगी भर के सारे पाप को मुक्त कर देगा, तो बड़ी तसल्ली मिलती है। पर ये जरूरी नहीं कि जो हम परसेप्ट करते हैं जो हम, जो हमारा परसेप्शन है रियलिटी वही हो। परसेप्शन तो ये भी था 5000 साल पहले कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है, और जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाया सच बोला कि नहीं पृथ्वी के चारों तरफ सूरज नहीं घूमता, उसको रिलीजियस लीडरों ने जेल के अंदर डलवा दिया, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास एक परसेप्शन है। इसका अर्थ नहीं कि रियलिटी चेंज हो जाती है, जो है वो है। इसलिए ये भी आप रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं ढूंढ सकते ना, क्योंकि करोड़ों लोग वोट करते हैं कि ये सही है तो इसीलिए सही होगा, भगवान ऐसा होता है तो वैसा होगा। ईश्वर अगर एक जगह पर होता ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ वो समझने की जरूरत है। जब भी हम बहुत बड़े से बड़े लिबरल हो जाते हैं, कितना भी बड़ा लिबरल हो जाए, बड़ा सोचते हैं, सोचते हैं पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया मेरे लिए जब मैं बोलता हूं तो ज्यादातर लोगों के सामने हमारे सामने जो नक्शा आता है जो ज्योग्राफिकल एरिया आता है वो ये पृथ्वी आती है, पूरी दुनिया के लोग उसको मानते हैं। पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया जब हम कहते हैं तो पृथ्वी उसके सामने एक रेत से भी छोटा है, द होल अर्थ प्लैनेट इज लेस देन ए सेंट, एक सोलर सिस्टम का पार्ट है पृथ्वी, करोड़ों करोड़ों सोलर सिस्टम एक एक गैलेक्सी में होते हैं, अनगिनत बिलियंस 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 ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं महाकाश में, फिर एक इतना ग्रेट स्पेस है महाकाश है, 25% मैनिफेस्टेशन में है, मोर देन 75% अनमैनिफेस्ट है जिसको आप डार्क एनर्जी कहते हो। आप अगर थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअली सोचने लग जाओ यूनिवर्स कितना बड़ा है तो पागल हो जाएंगे, सारे संसार में सब कुछ लटका हुआ है, आप भी लटके हुए हैं ग्रह नक्षत्र सब लटके हुए हैं, ये दुनिया है, दुनिया ये नहीं कि मेरा गांव, मेरा देश, ये प्लैनेट, तो उसके सामने कुछ भी नहीं। कभी कभी सोचना भी चाहिए हर आदमी को दुनिया कितनी बड़ी है। उससे अपने आप बड़ा ईगो भी बड़ा ठंडा पड़ता है, ये जो हम अकड़ते हैं, मुझे इतने लोग जानते हैं, एक भूकंप में ही 2-4 लाख मर जाते हैं साफ, जितने लोग आप जानते हैं वो एक ही सुनामी में उसे दुगना मर जाते हैं, बड़े अकड़ते हैं, मुझे इतने लोग जानते हैं, इतने बड़े देश का मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतने पैसे वाला हूं, दुनिया कितनी बड़ी है, कभी कभी सोचना चाहिए। और बच्चों को भी ये बताना चाहिए, कभी कभी पढ़ो देखो, कुछ नहीं मिलता तो आजकल तो इंटरनेट सब जगह है, ढूंढ के देखो, तो यार खुद के औकात पता लगता है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, मैं कितना बड़ा हूं। मर जाओ तो चींटी जैसे मरता है, किसी को पता नहीं लगता, हम भी मर जाते हैं, किसी को नहीं पता लगता जी, वो 10-20-50-100-200-2000-10 लाख-10 लाख-10 करोड़ लोग कुछ मायने नहीं रखते, ये प्लैनेट को कुछ मायने नहीं रखता इस विशाल संसार में। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम ये नहीं बात करते कि वो इस पृथ्वी को पालता है पोसता है, हम उस ईश्वर की बात करता है जो इस विशाल ब्रह्मांड का सृष्टा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड को जो बनाता है, पालता है, संहार करता है, उसके सिस्टम को मेंटेन करता है, वो कहां किसी कोने में समुद्र के ऊपर बैठ के आसमान में कैसे कंट्रोल करेगा। उसको भी उतना ही बड़ा होना पड़ेगा। वस्तु जितना ग्रॉस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, उतना वो उसको एक लिमिटेड जगह की जरूरत पड़ती है। जैसे ही वो जितना ज्यादा शटल फॉर्म में जाएगा उतना वो फैलता जाएगा। एक पेड़ है, अब पेड़ एक जगह घेरता है, कितना बड़ा जगह, जितना भी ज्यादा बड़ा जगह घेरेगा, पर वही पेड़ आप इसको जब वो खुद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जब एटॉम में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उस विशाल शक्तिपुंज में वो सम्मिलित हो जाता है। तो ईश्वर एक देशी होगा तो इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड का कर्ता, धरता, पालन करता, श्रृंगार करता कैसे बन सकता है। इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि समस्त इतना बड़ा ब्रह्मांड जो कंट्रोल करता है, उसके लिए सब जगह पहुंचना उसके लिए जरूरी है, और पहुंच तभी हो सकता है अगर वो सर्वव्यापी होगा, एक जगह बैठ के नहीं हो सकता। अब नंबर टू, अच्छा चलिए अगला पॉइंट आता है, इज गॉड जस्ट एज वेल एज मर्सीफुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या ईश्वर न्याय करने वाला है या दयालु है या दोनों है। देखिए मोस्ट ऑफ पीपल ये चाहते हैं, बा हम चाहेंगे ईश्वर न्यायालु कम हो, थोड़ा दयालु ज्यादा हो, न्यायालु बिल्कुल ना हो, इट्स बेटर फॉर गॉड। दयालु जितना ज्यादा होगा वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ज्यादा भक्त बनेंगे। भक्ति का एक ही स्रोत है कि दया चाहिए। दया क्यों चाहिए? हर बुराई को वो ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दे। ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी की बात नहीं, सब कुछ ब्लैक को, सारे ब्लैक एक्टिविटीज को, ब्लैक मनी को, ब्लैक सोच को, ब्लैक थॉट को वो व्हाइट में कन्वर्ट कर दे। ये सिर्फ दयालु व्यक्ति ही कर सकता है, न्यायालु व्यक्ति तो करने से रहा। इसलिए मोस्ट ऑफ डिवोटीज वांट ए गॉड हु इज मर्सीफुल नॉट जस्टिस। क्योंकि हम भगवान को अपने दृष्टि से जानते हैं ना, हमें वो ईश्वर नहीं चाहिए, वो है भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वो भगवान चाहिए जो हमारा गलत फलत सब ठीक कर दे, हमसे नहीं हुआ भी उसको ठीक कर दे, हम मेहनत नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अच्छी नौकरी नहीं कर पाते तो मंदिर जाकर के मिन्नतें मांग देते हैं, अगर कोई पैसे पैसे दे के अच्छी सी नौकरी लग गई कहीं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान तेरी कृपा से हो गई। तो ऐसा भगवान हमें ज्यादा मोस्ट ऑफ पीपल को यही सूट करता है, करवा अलग विषय है। तो ईश्वर न्यायालु है या दयालु है, तो स्वामी जी का उत्तर देते हैं, यस ही इज बोथ, वो दोनों है।
पर दोनों कंट्राडिक्टरी हैं. दिस टू एट्रीब्यूट्स आर इनकंसिस्टेंट. वेयर देयर इज जस्टिस देयर इज नो मर्सी, एंड वेयर देयर इज मर्सी देयर इज नो जस्टिस. भाई किसी ने चोरी किया, अगर पुलिस ने उसको माफ कर दिया तो पुलिस दयालु है, पर न्यायालय तो नहीं बना ना भाई. वो न्याय करे तो नहीं बना, जस्टिस तो नहीं बना, उसने जस्ट नहीं किया. अगर न्याय किया मतलब उसको उसने जो किया उसको सजा दिया, मतलब एक अच्छा आदमी को छोड़ दिया जिसने चोरी किया उसको जेल में उसको थाने में ले गया, तो वो न्यायालय तो बना पर दयालु तो नहीं बना. ये दोनों कंट्राडिक्टरी है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर न्यायालु भी है दयालु भी है? जस्टिस कंसिस्ट इन गिविंग ए पर्सन द जस्ट अमाउंट ऑफ प्लेजर और पेन, नाइदर मोर नॉर लेस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हिज डीड्स. ये जस्टिस है. वेल मर्सी कंसिस्टेड इन लेटिंग द ऑफेंडर गो अनपनिश्ड. मैंने गलत काम किया, मैंने माफी मांगा, सॉरी बोला, जज को बोला, जज जिसको भी बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, और उसने माफ कर दिया. ये है दया. हाउ कुड ही बी बोथ मर्सीफुल एंड जस्ट एट द सेम टाइम? स्वामी जी उत्तर देते हैं, जस्टिस एंड मर्सी डिफर ओनली इन नेम, दे सर्व द सेम पर्पस. जो जस्टिस या मर्सी, दया और न्याय का जो गोल होता है वो एक ही होता है. क्या? देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट क्या है? कि इज टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स. लोग अपराध ना करें, गलत काम ना करें. देयर दे एनेबल देम टू बी फ्रीड फ्रॉम पेन एंड मिजरी. गलत काम करेगा तो खुद भी दुखी होगा, लोग भी पिटाई करेंगे, खुद भी परेशान होगा, दुखी होगा, समाज को भी नुकसान करेगा, खुद का भी नुकसान करेगा, और नुकसान का जो रिजल्ट होता है वो दुख होता है, परेशानी होती है. वट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मर्सी बट टू रीड पीपल ऑफ मिजरी? यही है दया का मतलब. ये कोई दुखी है, उसका उसकी दुख को दूर करो. द इन्फ्लिक्शन ऑफ जस्ट पनिशमेंट इज एग्जैक्ट अकॉर्डेंस विद अमाउंट ऑफ क्राइम इज कॉल्ड जस्टिस. ये दोनों का गोल है. जस्टिस का मतलब जो गलत काम किया उसको उसी गलती का एहसास कराया जाए, और एहसास तभी होता है जब उसको सजा मिलती है जिससे कि आगे ना करे. और दया का मतलब भी यही होता है, जो जो दुखी है उसका दुख दूर किया जाए. दोनों का गोल एक ही है. द ऑफेंडर बी नॉट पनिश्ड, मर्सी विल बी डिस्ट्रॉयड. एक बात लीजिए, एक बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसकी मां बाप जो बहुत प्यार करते हैं, जो पड़ोसी को बच्चों को हमेशा डांटते हैं कि ये गलत है, मेरा बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता. अगर लड़ाई भी होती है बच्चों में तो पड़ोसी का बच्चे ने मारा होगा, मेरा बच्चा कभी नहीं मारता. मतलब अपने बच्चे के प्रति दया भाव बहुत है, इसीलिए उसकी सारे पाप माफ होते हैं, पर पड़ोसी के प्रति नहीं है तो सारे आरोप उसी पर होते हैं. बच्चा बड़ा होता है, चोरी करता है, दूसरे कहते हैं कि आपके बच्चे ने चोरी किया, मेरा बच्चा चोरी कर ही नहीं सकता. अगर पकड़े भी जाए तो माफ कर दो, तो हम पेरेंट्स माफ कर दिया. अब वो क्या, बच्चा दोबारा चोरी करता है, छुपाता है, चोरी करता है, तो एक बढ़िया अच्छा सा चोर बनता है. मतलब ऐसा टीवी चोरी करने वाला चोर तो बड़ा चीप हो जाता है, तो जरूर आप उसको मत सोचिए चोर से आप बड़ा चीप चोर. बड़े बड़े चोर होते हैं जो जो बिलियंस बिलियंस डॉलर घोटाला कर देते हैं, आप उनको थोड़ा रिस्पेक्टिवली देखते हैं. पर ध्यान रखिए, ये भी अगर आप उनके लिए शब्द यूज करें चोरी करें, पर हमें क्या है कि हम उनको थोड़ा पैसे वाले ज्यादा हैं तो थोड़ा बड़े रेस्पेक्ट देना चाहते हैं. भाई चोर कैसे बोले इतने बड़े आदमी को, जब करोड़ों घोटाला करता है तो हमको तो करप्शन किया है. पर एक्चुअली अगर आप सीधे सपाट भाषा में बोलेंगे वो चोर है. तो हम जब चोरी को माफ करते जाते हैं, हम एक बड़ा सा बढ़िया सा चोर पैदा करते हैं. और वो चोर खुद के लिए तो नुकसान करता है, कभी ना कभी तो जेल जाएगा, पकड़ा तो जाएगा. अब अगर ऐसा किसी देश में रहता है जहां बड़े मुश्किल से सजा मिलती है, अब ईश्वर की व्यवस्था में तो उसको जरूर सजा मिलेगी. पर प्रॉब्लम सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता है, कितना सिस्टम को नुकसान करता है। जब आप एक बुरे आदमी को सजा देते हो, आप उसको भी इस मौका देते हो, अच्छा उसके ऊपर भी आप दया करते हो कि आगे वो बुरा काम ना करे, और आप लाखों करोड़ों लोगों पर दया करते हो कि उनके साथ कोई जुर्म ना हो। जब हम एक बुरे आदमी को छोड़ देते हैं, हम लाखों करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं कि वो तड़पते रहे उस आदमी के अत्याचार से, और उस खुद को भी, उसको भी अपने बुरे काम को करने के लिए छोड़ते ही वो आगे भी दुखी होता है। आजकल ये जब से दुनिया भर में टेररिज्म पैदा हुआ है, उसके साइमल्टेनियसली उसके आगे पीछे और एक मूवमेंट चला, ये जो मूवमेंट ऑफ टेररिज्म के साथ साथ एक दूसरा मूवमेंट चला है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। बड़े सारे आपको एनजीओस मिलेंगे, ह्यूमैनिटी, जो जो ह्यूमन राइट मूवमेंट, जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन बनाए गए। ये जो मोस्ट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, वह एनजीओस होते हैं, आपको पता है वो सबसे ज्यादा किसका राइट प्रोटेक्ट करते हैं? टेररिस्टों के, क्रिमिनल्स के, और वो भी जो पैसे वाले या बड़े नाम कराए। भारत में भी होता है, एक टेररिस्ट को पकड़ा नहीं, सरकार के खिलाफ सारे ह्यूमैनिटी आ जाते हैं राइट कमीशन। और यकीन मानेंगे, हर पुलिस स्टेशन में रोज सैकड़ों गरीब कुचले लोगों को पुलिस जबरदस्ती उठा के ले आता है। किसके घर में बकरी चोरी हो गया तो दर्जनों लड़कों को उठा के लाता है, दर्जनों को पीटते रहते, कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं जाता है। इसको जेल में इसको ढंग से बिरयानी नहीं खिलाया, उसने बिरयानी डिमांड किया था, उसको सर्दी में कपड़े नहीं दिया टेररिस्ट को, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। ऐसा नहीं कि भारत में होता है, ये अमेरिका के भी होता है। ये जो जेल बना रखा है जहां वो टेररिस्टों को बहुत टॉर्चर करते, कौन सा जेल है वो, हैं? हाँ, ग्वाटेमाला वाला। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी सेंटिमेंट मुझे समझ में कम आता है। मेरे को शायद मैं बहुत चीप टाइप का आदमी हूं, पर आप अपने थोड़े, जो लोग थोड़े लिबरल है वो अपने लाइफ पर सोचें। वो आदमी जो जिसका फिलोसफी है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को मारूंगा, मैं मोटिवेट करूंगा ऐसे लोगों को जो मारे हैं, वो टॉर्चर करते हैं। आप देखते हैं इराक सीरिया में कैसे वो टॉर्चर करके कैसे बिहेडिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं। उस आदमी को अगर पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं कि खौफ पैदा हो उसके अंदर, या उस जो सुने कि कैसे टॉर्चर होता है कि ऐसा ना करें, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलता है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी अमेरिका में वे ऐसे बहुत सारे भले लोग हैं जो जेल में सड़ते हैं, जिनके लिए कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं आता है। अपराधी को सजा देना भी दया होती है, उसके ऊपर भी, करोड़ों लोगों के ऊपर भी। तो न्याय इनडायरेक्टली दया का एक रूप है। जब मैं, बच्चा मेरा बुरा काम करता है, मैं उसको पनिशमेंट देता हूं, सजा देता हूं, वो सजा कैसे भी हो, मैं डांटता हूं, अस्कत टीवी देखना बंद करता हूं, या थप्पड़ मारता हूं, हरेक का अपना अपना जो भी कल्चरल इश्यू है, ये बच्चे को कितना भी बुरा लगे वो उस पर दया है। और आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ गलत प्रैक्टिस उनके अंदर, वह हैबिट है, मां बाप को ही बोलते हैं, बचपन में आपने रोका क्यों नहीं था मुझे, अगर मैं उस समय कर रहा था, तब तो मैं बच्चा था, वो आपका काम था कि मुझे रोकना, आपने तब क्यों नहीं रोका। वही बच्चा उल्टा जवाब देता है बड़ा होकर के, इट वॉज योर ड्यूटी टू करेक्ट मी, यू वट एवर आई एम टू डे इट्स बिकॉज ऑफ यू, यू डिडंट करेक्ट मी, वाई आर यू ब्लेमिंग इट टुडे। तब हम दया कर रहे थे, पर दया का मिसपरसेप्शन जो था वो कर रहे थे, इट वॉज नॉट दया, इट वॉज नॉट लव।
स्वामी जी इसी बात को थोड़ा एलाबोरेट करते हैं, बात को समाप्त करेंगे. टू लेट अ वन रोवर मीन्स टू गिव पेन टू थाउजेंड्स ऑफ राइटस पीपल. इट विल बी एन आर्ट ऑफ मर्सी इनडीड टू दैट रोवर टू कीप हिम इन प्रिजन एंड देयर बाय प्रिवेंट हिम फ्रॉम फर्दर कमीशन ऑफ क्राइम्स. रोवर के ऊपर भी दया है, पब्लिक के ऊपर भी. इट विल ऑल्सो बी एन आर्ट ऑफ मर्सी टू थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल टू रीड देम of that rover or decade by putting him into death or keeping him prison, जो भी justice system है. real life में भी यही है. और ईश्वर अगर कुछ ऐसा भी करता है वो भी दयालु और न्यायालु है. behold the infinite mercy of God and he has created all things in this world for the good of all and given them all freely. ईश्वर की दया देखिए. अब दया तो हम ढूंढते हैं कि मैं बीमार था, प्रार्थना की, ठीक हो गई, दया. पर भूल जाते हैं तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे मां बाप पैदा होने से पहले, तुम्हारे पूरा का पूरा इंसानी नस्ल पैदा होने से पहले उनको खाने पीने के लिए फ्री में भगवान ने क्या क्या दिया. पेड़ पौधे, ये पानी, ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये धरती, ये आकाश, ये लाइट, अनाज, फल फूल, पौधे. ये दया नहीं है ईश्वर की, उसको हम काउंट नहीं करते. ये पानी अगर सूख जाए, जैसे कि धीरे धीरे हम मिस यूज करते हैं पानी का, और बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे देशों में अब पानी के लिए अब लड़ाई होने, अभी तो पेट्रोल और गैस की लड़ाइयां चल रही है, 50-100 साल के बाद पानी के लिए विश्व युद्ध लड़े जाएंगे, तब याद आएगा ईश्वर कितने दयालु था. तो ईश्वर की दया है कि प्राणी को पैदा करने से पहले उनकी सहूलियत का ख्याल रखा कि आएंगे तो कैसे रहेंगे, उनको हवा चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको प्रकाश चाहिए, खाना पीना चाहिए, उनको इंटेलेक्ट चाहिए, उनको यूज करने के लिए. ये जो इंटेलेक्ट ईश्वर ने हमें दिया वो उसकी दया नहीं है. वो आपको पैदा करता बिना इंटेलेक्ट पैदा करता मनुष्य मनुष्य को. इजंट इट हिज मर्सी. ऑन द अदर हैंड द इनइक्वालिटी इन द कंडीशन ऑफ मैन, सम आर इन द स्टेट ऑफ मिजरी while others in the state of happiness, is a clear proof of the operation of his law of justice. बहुत सारे लोग ईश्वर पर गुस्सा निकालते कि कैसा ईश्वर, देखो कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई बीमार है, कोई अच्छा है, कोई परेशान है, वगैरह वगैरह. यह उसकी जस्टिस है. जो हम नहीं जानते कि मेरे से क्या क्या गलतियां, क्या क्या अपराध हुए थे. मुझे पूरी सोसाइटी प्रोटेक्ट किया था जब मैं करोड़ों लोगों को मार रहा था, लाखों लोगों को लूट रहा था. मुझे कोई सजा नहीं मिली. मरने के बाद ईश्वर ने सजा दिया दूसरे जन्म के रूप में. कैसे सजा दी? तो संसार में जो इंबैलेंस दिखता है वो हमारे कर्मों का फल है, और ये कर्मों का फल ईश्वर के जस्टिस सिस्टम का पार्ट है. तो ये जो इनइक्वालिटी दिखता है, जो विषमता दिखता है, ये उसकी जस्टिस सिस्टम है. और जहां जहां जस्टिस सिस्टम रहेगा वहां ये विषमता रहेगी. जो अच्छा आदमी वो घर में रहेगा, जो बुरा आदमी वो जेल में जाएगा. ये विषमता है. ये सिर्फ दया वाले राज्य में ही होता है कि चोर और साधु दोनों बाजार में घूमते हुए मिलेंगे, पर न्याय वाले राज्य में अपराधी को अलग जगह मिलता है. और जहां जस्टिस होगा वहां सो कॉल्ड इनइक्वालिटी होगी. ये जो इनइक्वालिटी समाज में है ये ईश्वर की उस न्याय व्यवस्था का हिस्सा है. नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे आज गॉड ए फॉर्म और ही इज फॉर्मलेस. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने ध्यान से सुना. ओम शांति शांति.